رسول نے شرف جب یاد آدے محمد ان سبوں میں افضل و برتر نکل
WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਟੈਕਸ ਕੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660। quicktruckcube.com।
आपके जहन में कुछ क्रिकेट चल रहा है? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं आपके शहर ब्रैम्पटन में। बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक TD क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिकाज बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
چاندنی
بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز، ساؤنڈ سسٹم انوویشنز، چاندنی بینکویٹ ہال،
30 years آف ہاسپیٹلٹی ایکسپیرینس، کارپوریٹ ایونٹ، ایگزیبیشن، ایکسپو اور اینی سیلیبریشن،
سارے پیکج کا نام چاندنی بینکویٹ ہال، آج ہی کال کیجیے 437-218-8734
चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300,
905-272-2300, airwings.ca. Open Mic Cafe and Cuisine, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें 770 एएम डायल पर सुन रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ गर्मा गर्म खबरें लेके शाजिया मलिक साहिबा जो हैं वो जोड़ चुकी हैं। जनाब बिल्कुल, अगर आप बाहर हैं और कहीं फंसे हुए तो जनाब बिल्कुल एहतियात कीजिए, काफी फ्लडिंग सिचुएशन है पूरे GTHA में। इतनी बारिश वो कह रहे हैं कि कभी हुई नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि शाजिया जी को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर इस बारिश पे चर्चा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाजिया जी कैसी हैं?
वालेकुम अस्सलाम। यानी कि तुमने कहा है बहुत ज्यादा जो है फ्लड्स आए हुए हैं, शाजिया जी को ज्वाइन करा लेते हैं। हाँ। यानी मेरे आने से फ्लड्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्या मतलब, क्या तुमने ये दो सेंटेंसेस कैसे गलत जोड़े हैं?
नहीं, मैंने बिल्कुल सही जोड़े।
नहीं, गलत जोड़े।
जो खबरें देंगी ना, वो इस फ्लडिंग से जुड़ी हुई होंगी।
अच्छा,
इसलिए मैंने आपको फ्लडिंग के साथ जोड़े। वैसे आप तो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि देखें प्रॉब्लम है, फ्लड की जो लेवल है ना तकरीबन 4 फुट से ऊपर है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई
डूब जाए
बात साथी।
तो मैंने उसमें जो समझदारी की है, मैंने गाड़ी में बैठ के जो है ना बाहर निकलना है। देखो कितनी मैं समझदार हूँ।
गाड़ी तकरीबन 7-8 फुट आपकी ऊंची है माशाल्लाह, तो आप उसमें सेफ रहेंगी। लेकिन आप पैदल बाहर नहीं जाएंगे?
नहीं नहीं नहीं, फिर तो मलिक साहब ने नजर ही नहीं आना।
नहीं नहीं, मलिक साहब क्या, बस
नजर नहीं आ रहा पानी में किधर गए हैं,
वो तस्वीर भी नहीं आएगी,
कुछ भी नहीं आएगा, पता ही नहीं चला गया पानी में किधर गए हैं हम।
याद करें उसका।
अच्छा अच्छा,
लेकिन क्या
सिचुएशन है? वैसे तुम मेरे से कोई 2 इंची लंबे हो, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, तो तुम्हें भी जो है ना आज बहुत एहतियात करनी चाहिए।
आप पता है आपको?
हाँ, मैं जितनी भी हूँ
3.97।
हाँ, 3 इंच हील, उसके बाद तुमने कहा है मुझे, है ना, बस। तो तुम 3 इंच हील के बाद जो कोई 1.5 इंच रह जाता है ना, उतने बड़े तुम हो।
5'7"
नहीं, ये तुम 5'7" जो है ना ख्वाब में तुम्हारा, यस तुम्हारा, तुम ये होते ना बिल्ली को छिचड़ों के ख्वाब,
जो तुम्हें भी ख्वाब, हेल्थ कार्ड है ना।
हाँ जी,
उस पर लिखा हुआ है।
अच्छा, तो मेरे
तो कैनेडियन तो टोल में गलत नहीं हो सकते।
हाँ, तो जो मेरा लाइसेंस और हेल्थ कार्ड है उसमें तो ये 4.3 तो 3 इंच हील ये मेरे पे भी नहीं लिखा हुआ।
नहीं लिखा हुआ था?
नहीं,
मैंने खुद अपनी इस शफाफ आंखों से देखा।
ओए 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 ओए, तो फिर इसका मतलब
3.97।
अच्छा, तुम चश्मा जो है फिर चेंज कराओ। डी है,
मैं तो अभी चेंज कराया।
नहीं नहीं, फिर उसमें सही नजर नहीं आ रहा, ये सस्ता वाला लगवाया ना, ये घटिया के तुम का।
एक आध सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं नहीं, अच्छे अच्छे ऑप्टिशियन के पास जाओ, तुम्हें सही वो दे।
गरीब आदमी,
गरीब टाउन की फैक्ट्री नहीं चल रही तुम्हारी।
देखिए बात हुए हुए एक फैक्ट्री कब आज आपकी फैक्ट्री हो।
हाँ।
तो इसका मतलब नहीं आप अमीर
है। अच्छा, उसका क्या मतलब है? यानी हर दुनिया के बंदे ने फैक्ट्री लगाई हो, फिर तो वो तो फिर गरीब जो है वो फिर
आपकी टावर की फैक्ट्री भी होगी ना, तो आप क्या होंगी? शाजिया मलिक।
हाँ, नहीं तो
टावर की फैक्ट्री नहीं भी होगी ना तो मैं अमीर अहमद।
अच्छा, हाँ, वो अमीर तुमने बना लिया इंसिस्ट कर करके।
हाँ,
तुम्हारे पेरेंट्स से वैसे तुम्हारा नाम आमिर से गलत लिखा था,
तो
वो
अमीर होगा।
वो जो जुवेद साहब कहते हैं ना आमिर, वो तुम्हारा नाम है असल में।
जावेद साहब से मोहब्बत आ
रही है, तुम अमीर अमीर करते रहते हो उसको।
एक तो जावेद साहब ही है, तो आमर वाला जो मदा वाले।
अच्छा, मदा क्या होता है? ये मदा क्या है? ये मदा
मतलब मैंने तालिया बालगान खोला हुआ है।
बड़ा
कहूंगा, देखें 6 से 7 वाले में ना, फिर
अलिफ तो हुआ ना, ये मद्दा क्या होता है? मद्दा होता है जो कि किसी की तारीफ, जो किसी का फैन होता है उसको मद्दा
कहते हैं। तो ये अलिफ का फैन है।
अच्छा, अलिफ का फैन है।
इसलिए कहते हैं ना कि देखिए बचपन में अगर कायदा सही पढ़ लिया होता ना, नूरानी कायदा।
सिर्फ नूरानी तो नहीं होते, दूसरे कायदे भी होते हैं। ये नूरानी
है, सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ लेती ना वो, तो आपको ये अलिफ मद बे अलिफ बे अलिफ ये सब समझ आ जाता।
अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्रांची ये होगी ना अपने, तो मेरे लिए
मैं कोशिश करूंगा कि अभी कभी नूरानी मुझे मौका मिला कराची जाने,
नूरानी सारे कायदे ले आना
आपके लिए, नूरानी कायदा लेकर
लेकर आना
आपको, अलिफ मद आ ऐसे एजुकेट कर रहा हूँ आपको।
आवाज क्या निकाली है तुमने?
अलिफ मद आ, इसमें क्या बात है?
बकरियों वाली
नहीं, मतलब नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं है मुझे।
नहीं तुम लाओगे तो मैं पढ़ूंगी ना,
मैं लाके आपको पढ़ाऊंगा।
हाँ बात, चलो ठीक है।
ये आमर, वो आमर वाला है डिक्टेटर वाला।
अच्छा अच्छा।
और गुरमेल जी जो आते हैं ना, वो लेते हैं स्पेशल नाम।
हाँ,
वो आमर वाला, आमर यानी आ और मर। मुझे उनकी मोहब्बत है बहुत,
बड़ी प्यारी, बड़ी
प्यारी। आमिर की जगह अमीर कर लेता हूँ वैसे ही,
शायद अमीर हो जाऊं।
नहीं नहीं, घर में अमीर है, बहुत है।
अच्छा,
घर में हमारे बहुत अमीर है, एक से एक अमीर बैठा हुआ।
अच्छा, अच्छा।
एक पूरा अमीर हमजा अहमद है, एक अमीर अहमद है।
अच्छा,
तो यू डोंट वरी अबाउट
इट,
आप सिर्फ अपनी फिक्र करिए।
हाँ।
फ्लड बहुत आया हुआ,
आया हुआ। ठीक है ठीक है भाईजान, इससे पहले कि आपकी फालतू गिरियां ज्यादा शुरू हो जाए, हम काम शुरू कर लें।
हाँ, क्योंकि आप देखें सुबह से आप आई नहीं है।
हाँ,
मुझे नहीं लगा कि आज कुछ काम किया।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, काम करने के लिए तुम्हें जो रखा हुआ है
आपने टाइम जाया किया, यकीन।
अच्छा अच्छा, चलो जी ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियो लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट। फैसल चटा साहब का ये है, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के, तो आप इन दोनों में से किसी एक में भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा पे एक इनका रेस्टोरेंट है, उसका नंबर है 9052323663, और दूसरा है जी ओकविल में 2294 ओकविल लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर है, और इसका नंबर है 9052262294। और जी चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, 1400 बंदे प्लस टाई, आपको पता ही है मैं आमिर और माजिद भाई आप बुला सकते हैं। 32 रूम लग्जरी होटल है ये, और बहुत ही जबरदस्त जगह पे लोकेटेड है, 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में, तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इवेंट यहां पे कराना है, 6479653823। और जी साढ़े राजा ते बादशाह जी, बहुत बड़े राजे भी ने ते बादशाह भी ने, और अगर आपको राइट इंश्योरेंस चाहिए तो आप राजा बादशाह जी के पास जाओ, आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस बड़ी जबरदस्त किस्म की देंगे, ऑल स्टेट में होते हैं राजा बादशाह। राजा बादशाह का नंबर है 6472903773। ठीक है जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं, तो हम आपको आज बता दें कि हमारे जो टूडो साहब थे आज किचनर के अंदर थे, और वहां पे उनकी जो मुलाकातें हैं वो मेयर बैरी वेबोनिक्स के साथ हुई हैं, और वहां पे बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, और सिटी हॉल के अंदर फिर मीडिया से भी बातचीत की है, और इन्होंने जो है ये जो इन्वेस्टमेंट्स की बात है इसमें की है। लेकिन इसके साथ साथ जो पैरेलल इवेंट चल रहा था वो हैलिफैक्स में चल रहा था प्रीमियर्स का, जिसकी खबर अब हम आपको कल से सुना रहे हैं कि ये यहां पे आपको पता ही है कि एवरी समर ये सारे जो प्रीमियर्स हैं ये गैदर होते हैं टू टॉक अबाउट शेयर्ड प्रायोरिटीज, और जो अपना यूनाइटेड फ्रंट होता है फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बनाते हैं, और कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को जी सानू होर पैसे दो। ठीक है जी, इस मौके पे बात करते हुए क्यूबेक के प्रीमियर फ्रैंकवा लगा जो हैं उन्होंने भी कहा जी कि हमको और ज्यादा फंड्स चाहिए हैं, और हम फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आपका बजट जब भी आता है, हर साल आता है, और वो नए नए आप प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शंस के प्रोग्राम्स जो है बनाते हैं, आपका ज्यूरिसडिक्शन प्रोविंसेस में बनता नहीं है। नोवा स्कोशिया के जो प्रीमियर है टिम ह्यूस्टन, उन्होंने तो आपको हमने कल बताया ही था कि लेटर लिखा है प्रीमियर साहब को, और उन्होंने उसमें कहा है जो नई डिटेल्स आई है लेटर की कि भई आप प्रीमियर्स के साथ एंगेज करें। अल्बर्टा की जो प्रीमियर है डेनियल स्मिथ, उन्होंने तो बहुत ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट को किया क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा जी कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है म्यूनिसपैलिटीज को दे रहे हो हाउसिंग के लिए, ये पैसा आपको सारा प्रोविंसेस को देना चाहिए ताकि हम जो है डायरेक्ट करें कि कहां पे किसको देना है। न्यू ब्रंसविक के जो प्रीमियर हैं ब्लेन हिग्स, उन्होंने कहा जी कि आप प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर इन्फ्रिंज ना करें और अपने काम से काम रखें, यानी कि फेडरल लेवल की आप चीजें चलाएं। तो ये सारे जो आज हैं इस तरह की बातें हुई हैं, इसके अंदर जाहिर है कि इमिग्रेशन की बात हुई है, और जो ट्रंप साहब के ऊपर हमला हुआ है उसके ऊपर भी बात हुई है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जाहिर है कि जीटीएचए के अंदर फ्लडिंग, जो फ्लडिंग ये चल रही है उसकी इंतहाई बुरी हालत है। हमने आपको दिखाई थी एक ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے ہمارا ٹک ٹاک دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر ہمارے جو بالکل آفس کے باہر جو حالات ہیں وہ ہیں، بے تحاشا فلڈنگ ہے جی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے علاقے جیسے کہ گارڈنر ایکسپریس جو ہے وہ بلاک تھی، ڈیڈا اسٹریٹ بلاک تھی، بے ویو جو ہے وہ، لیک شور بلیوارڈ، ڈان ویلی پارک وے، یہ سارے کے سارے علاقے بند تھے اور یہاں پہ بہت ساری جو لینز تھی وہ بھی بند کی گئی تھی. انوائرمنٹ کینیڈا جو ہے اس نے پہلے ہی جو ہے رین فال کی وارننگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ بے تحاشا صبح کے وقت ہوئے گی، اینڈ دین ان دا آفٹرنون اٹ ول اسٹارٹ ٹیپرنگ، یعنی کہ ختم ہونا شروع جو ہے وہ ہو جائے گی. انوائرمنٹ کینیڈا نے یہ بھی کہا تھا جو ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو بریجز اور بلڈنگز اور لوگ جو ہیں وہ بھی سویپ ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ یہاں پہ رینز آئیں گی، تو اس لیے اگر آپ کی گاڑی پھنس جاتی ہے تو آپ اپنی گاڑی کو چھوڑ کے وہاں سے نکل جائیں، اپنے بچوں اور پیٹس کا خیال رکھیں اور کریکس اور ریور بینکس کے پاس بالکل نہ رہیں، اپنے ویلیویبلز جو ہیں اونچی جگہ پہ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ آ جائے، پانی آ جائے. اس کے علاوہ جی جو ہائیڈرو ون ہے اس نے کہا جی کہ بے تحاشا رینز کی وجہ سے تھاؤزنڈز آف لوگ جو ہیں دے آر اسٹل ود آؤٹ پاور اور ابھی تک ریسٹور جو ہے وہ نہیں کیا گیا. جو ہالٹن کا ایریا تھا البتہ وہاں پہ جو ایمرجنسی کروز تھے ان کو بلایا گیا تھا 8th لائن ساؤتھ آف جارج ٹاؤن کے اندر، کیونکہ 3 کنسٹرکشن ورکرز جو کہ انڈر گراؤنڈ ٹنل میں کام کر رہے تھے پانی اندر آنے کی وجہ سے وہ پھنس گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو جو ہے اب پتہ نہیں ابھی تک چلا ہے کہ ان کو بیچاروں کو نکال سکے ہیں کہ نہیں نکال سکے ہیں. بہرحال فوراً ان کو جو ہے بلایا گیا. یہ جو انہوں نے انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا ہے کہ کسی کسی جگہ پہ تو 40 ملی میٹر تک رین فال ہوئے گی پر آور اور کسی جگہ پہ 125 mm جو ہے ملی میٹر یعنی کہ رین جو ہے وہ ایونچولی پڑے گی، تو آپ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا جی ساودھان رہیں. ٹورنٹو ٹریفک جو ہے وہ اب کرائسس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، بے تحاشا کرائسس آ گیا ہے ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے ٹورنٹو کے اندر. اکارڈنگ ٹو ٹورنٹو ریجنل بورڈ آف ٹریڈ، انہوں نے جو ہے اپسوس ڈیٹا کا ایک گرڈ لاک کے اوپر جو سروے ہے اس کو انہوں نے جی ٹی ایچ اے کے اندر شیئر کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ 53% لوگوں نے کہا جی کہ ہم تو ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے جی ٹی ایچ اے میں. 62% نے کہا کہ ہم جو ہے ریلکٹنٹ ہیں ٹو ٹریول ٹو ورک بیکاز آف ٹریفک گرڈ لاک. 18 سے 34 کی بریکٹ کے جو لوگ ہیں اس میں 64% نے کہا جی وی آر کنسیڈرنگ ٹو موو آؤٹ آف جی ٹی ایچ اے. 42% نے کہا جی ہم تو اوائڈ کرتے ہیں شاپنگ، سپورٹس ایونٹس اٹینڈ کرنا، انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس بیکاز آف دس ٹریفک. 38% نے کہا جی ہم تو باہر کھانے کے لیے تک بھی نہیں جاتے ہیں. 31% نے کہا جی کہ ہم تو فیملی اور فرینڈس تک کو وزٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں بیکاز آف ٹریفک کنجیشن. جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح لوگ جو ہیں جی ٹی ایچ اے چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے تو یہاں پہ جو بہت زیادہ کرائسس ہو جائے گا ورکرز کا اور اکانومی جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی. 46% نے کہا جی کہ ہم جو ہے اب زیادہ لمبا ٹائم لیتے ہیں کمپیئر ٹو 2023 کیونکہ ہم پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں. 62% نے کہا جی ہم بالکل ریلکٹنٹ ہیں، ہم بالکل جو ہے کام پہ جانا نہیں چاہتے ہیں. اور جو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی اس کی جو وجہ ہے مین وجہ جو ہے کنسٹرکشن بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو جو آلٹرنیٹیوز بھی ہیں وہ بھی بڑے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. جیسے کہ آج اب مجھے جو ہے سیدھی سڑک میں لیتی ہوں، اپنے آفس سے جاتی ہوں ڈاؤن ٹاؤن مسز ساگا میں، تو اب مجھے یہ چونکہ ساری فلڈنگ کی وجہ سے روڈ بند تھی تو مجھے جو ہے وہ میوس روڈ لے کے اوپر سے جو ہے مجھے ایگلنگٹن لے کے جانا پڑا ہے. تو ایگلنگٹن تو چوکر بلاکر تھا جس وقت میں نکلی ہوں، تو بہت ہی جو ہے مشکل ہے. اسٹیٹس کینیڈا کی ایک خبر آئی ہے جی، اور اس کے مطابق اینول انفلیشن جو ریٹ ہے وہ نیچے آیا 2.7% سے جون میں، اور وہ کہتے ہیں جی اٹ از بیکاز آف ایئر آن ایئر ریڈکشن آن گیس. ظاہر ہے کہ یہ تو آبویس ہی ہے، گیس کی پرائس نیچے آئے گی تو چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو انفلیشن آپ کو شاید نیچے دکھے گی، مگر یہ کوئی جو ہے وہ میجرمنٹ نہیں ہے انفلیشن نیچے آنے کا کیونکہ میجرز تو آپ نے کوئی پراپر لیے نہیں ہے. پرائسز جو تھیں وہ جون کے مہینے میں 0.4% سے اوپر گئی تھیں اور مئی کے مہینے میں تو 5.6% سے جمپ کی تھیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر گیس کی پرائس کو ہم کر دیں تو ایکسکلوڈ تو کنزیومر پرائسز جو ہیں وہ رائز کی ہیں 2.8% سے جون میں. انفلیشن جو تھی مئی میں 2.9% تھی، और जो उन्होंने कहा जी कि जो लोअर प्राइसेस थे ड्यूरेबल गुड्स के, उन्होंने ओवरऑल जो है कंट्रीब्यूट किया स्लो डाउन में जून के अंदर, जो कि गिर गई थी कीमतें 1.8% से ईयर ऑन ईयर, और 0.8% डिक्लाइन मई में भी आया था। लेकिन ग्रोसरी की प्राइसेस जो हैं जी वो मई के महीने में भी 2.1% से ऊपर गई थी और 1.5% 2023 से जो थी वो ज्यादा थी। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ है जिसमें के पेस ऑफ ग्रोसरी प्राइसेस जो है वो ऊपर गई हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स में 3.8% से गेन्स आए हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस ग्रो की हैं 2% से, प्रिजर्व फ्रूट और फ्रूट और फ्रूट प्रेपरेशंस के जो कॉस्ट हैं वो भी 9.5% से ऊपर गए हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्राइसेस 5.6% से ऊपर गए हैं। फ्रेश फ्रूट की प्राइस अलबत्ता नीचे गिरी है 5.2% इन जून कंपेयर्ड विद 2.8% ड्रॉप इन मई। और अब जो नेक्स्ट बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट है वो अब जुलाई 24 को आने वाला है, तो अब पता नहीं है कि ये प्राइसेस जो हैं ये कितना अफेक्ट करेंगी। मुझे नहीं लग रहा वैसे कि चेंज आएगा कोई बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट में, मुझे लगता है कि वो शायद कांस्टेंट रखेंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी एक है शबाना महमूद, 43 ईयर्स उनकी एज है। शी हैज एक्चुअली क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंग्लैंड। शी टुक ओथ एज यूकेज न्यू लॉर्ड चांसलर। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट। जस्टिस सेक्रेटरी शबाना महमूद जो है उनकी जो आज सेरेमनी हुई वो हुई एट रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इन लंदन इन द प्रेजेंस ऑफ लेडी चीफ जस्टिस सू कर और प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रॉबर्ट रीड, चांसलर ऑफ हाई कोर्ट जूलियन फ्लॉक्स, इनकी मौजूदगी में यह हुआ। इनकी जो है जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान कश्मीर से है, कश्मीरी ओरिजिन की हैं ये, और ये अभी बर्मिंगम से एमपी का रेस जीती थी। सोशल मीडिया के ऊपर जो है इन्होंने आज लिखा कि मैं जो है चैंपियन हूं ऑफ रूल ऑफ लॉ, 900 ईयर से ये रोल अपनी जगह पे है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इंटरनेशनल लॉ को डिफेंड करूं, ह्यूमन राइट्स को और एक्सेस टू जस्टिस दूं विमेन और गर्ल्स को और विक्टिम ऑफ अब्यूज को। तो ये आज इन्होंने जो है दावा किया है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट है जी, और ये रिपोर्ट जो है बहुत ही दुख देने वाली है, खासतौर पे जो गोरे हैं ब्रिटिश हैं बेचारे, उनको तो आज बहुत ज्यादा दुख हुआ है। उसकी वजह यह है कि सीनियर लेबर फिगर्स जो हैं उन्होंने जो है बड़ा इसके ऊपर रिएक्शन दिखाया, क्योंकि ट्रंप साहब के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो नॉमिनी हैं JD Vance, उन्होंने कहा है जी कि यूके हैज बिकम द फर्स्ट ट्रूली इस्लामिक कंट्री and they will get the nuclear weapons under Labour Party. Vance Jr. जो है वो ओहायो के सेनेटर हैं और वैसे तो पास्ट में काफी ट्रंप साहब के अगेंस्ट बोलते रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये वेंस साहब को इन्होंने अपना नॉमिनी कैसे चूज किया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन भारत जी उन्होंने इसको किया है। इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए एंजेला रेनर जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की, उन्होंने कहा जी कि मैं तो इनसे मिलना चाहती थी और मुझे समझ नहीं आ रही कि यूके का इन्होंने ये कैरेक्टराइजेशन कैसे किया, मैं तो बड़ी प्राउड हूं कि लेबर का सक्सेस हुआ है और हमको जो वोट्स हैं वो तमाम कम्युनिटीज में और पूरे मुल्क में बने हैं, मिले हैं, तो हम तो बड़ा इंटरेस्टेड हैं अपने मुल्क को अच्छी तरह से रूल करने में अलॉन्ग विद आवर इंटरनेशनल एलाइज। और लेकिन ये जो चीज है ये काफी एम्बेरसिंग हो सकती है यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमी, क्योंकि उनका बड़ा प्यार है इनके साथ ये जो हैं जेडी वैंस, और उनके साथ ये काफी कहते हैं कि हम ब्रिजेस बिल्ड करेंगे, यानी कि हम जरा काफी जो हमारे बीच में रिफ्ट्स आ गई हैं या दूरियां आ गई हैं उनको करेंगे, क्योंकि अक्सर इनके साथ जो है अपना जो इम्प्रूविश चाइल्डहुड है उसके बातें करते रहते हैं और वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लिसनर हैं। वैंस साहब जो है वो नेशनल कंजर्वेटिज्म जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी लास्ट वीक उसमें बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से बहुत ज्यादा खतरे हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बारे में नहीं किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस दुनिया के अंदर ट्रूली इस्लामिक स्टेट कौन सी है? आप सोचते हैं कि शायद ईरान है, हाँ हो सकता है, मे बी पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने कहा जी मे बी पाकिस्तान, लेकिन असल में जो इस्लामिक स्टेट है वो यूके है। अब जाहिर है इस पे तो लोग भड़कने ही थे। एंड्रयू बोवी जो हैं शैडो वेटरन्स मिनिस्टर, हालांकि वो लेबर के अगेंस्ट हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा जी कि हम बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं डिसएग्री करता हूं वैंस साहब के स्टैंप्स के ऊपर और मैं डिसएग्री करता हूं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लेबर के साथ, लेकिन एक्चुअली इस इश्यू पे मैं नहीं कर सकता कि वो कंट्री को जो है इस्लामिस्ट स्टेट बनाएंगे और इनफैक्ट जो वैन साहब का जो ये कमेंट है ये काफी ऑफेंसिव है। तो पायन पता नहीं किस ख्याल में थे जो उन्होंने ये सारी बातें जो हैं वो की हैं। बहरहाल जी, अच्छा जनाब, सैकड़ों ही डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे ये डाउन टाउन मिलवॉकी में आए हुए थे, जहां पे के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन RNC जो है वो अमरीका में चल रहा है। यहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनके एक्टिविस्ट जो हैं देवर स्टैंडिंग आउटसाइड फाइजर फोरम सिक्योरिटी पैरामीटर, और वो सुन रहे थे इनको, स्पीकर्स को सुनने के लिए आए हुए थे, और उन्होंने अपने उठाए हुए थे बहुत सारे कार्ड जिसमें कि वो इनको भी बू कर रहे थे, ट्रंप साहब को भी, और फिर उन्होंने कहा जी कि गाजा के अंदर वॉर भी रुकनी चाहिए और अबॉर्शन जो है उसको वो सपोर्ट कर रहे थे, इमिग्रेशन राइट्स के लिए बात कर रहे थे, और काफी यहां पे जो कहते हैं ना ट्रंप टप एटमॉस्फेयर था। यहां पे म्यूजिक बज रही थी, गिटार बज रहे थे, और लोग जो थे उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, कुछ तो डेमोक्रेट्स को दिखा रहे थे सपोर्ट और कुछ रिपब्लिकन्स को दिखा रहे थे। इसके साथ वो खड़े हुए थे और भी प्ले कार्ड्स लेके, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड रिच, डिफेंड एंड एक्सपैंड इमिग्रेशन राइट्स। और जो काउंटर प्रोटेस्टर्स थे वो डिनाउंस कर रहे थे LGBT राइट्स, वो डिनाउंस कर रहे थे मुसलमानों को, ब्लैक लाइव्स मैटर को, विमेन को। टेम्परेचर जो था काफी हाई था, 32 डिग्रीज के करीब था, लेकिन फिर भी यहां पे जो है वो आए हुए थे और वो कह रहे थे, नारे लगा रहे थे बहुत ज्यादा कि रिपब्लिकन्स हैव टू गो। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रही है कि भाई अब ये क्या चाह रहे थे, क्योंकि दोनों ही साइड के जो है प्रो ट्रंप एंड अगेंस्ट ट्रंप एंड प्रो बाइडन एंड अगेंस्ट बाइडन सब लोग यहां पे इकट्ठे जमा हुए थे। तो मतलब है काफी खिचड़ी बनी हुई थी, सिंपल जो हमारे जुबान में कह सकते हैं आप। अमेरिका के अंदर जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने अब काफी सारी जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई है, जो ट्रंप साहब के ऊपर अटैक हुआ है उस सिलसिले में, और FBI ने जो है और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब बात कर रही हैं कि ये जो थॉमस मैथ्यू कुक्स 20 साल का लड़का था जिसने के अटैक किया था ट्रंप साहब के ऊपर, उसके मोटिव्स क्या थे। अभी तक भी इनको मोटिव्स नहीं पता चले हैं, लेकिन एक सोर्स ने कुछ मीडिया हाउसेस के साथ बात की और उसने कहा जी कि ये जो गन इसने यूज की थी ये इसके बाप ने 2013 में ली थी। मैथ्यू जो था उसने कोई तकरीबन 50 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन ऑफ गन, एक जो स्टोर है उसमें बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया से उधर से खरीदी थी शूटिंग की मॉर्निंग में। और ये बंदा जो है इसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ही हैज टॉक टू द मीडिया ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, और FBI ने कोई हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए हैं, और उन्होंने इसका सेल फोन जो है वो भी लड़के का लिया है और उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या मैसेजेस थे। FBI इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्होंने और होमलैंड सिक्योरिटी वाले जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि इस तरह के और भी अटैक्स और फॉलो अप अटैक्स और रिटेलिएटरी अटैक्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर आ सकते हैं। FBI के मुताबिक दो इम्प्रूवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेज जो थी इसकी गाड़ी से मिली हैं और एक इसके घर से मिली हैं। शूटिंग डे पे क्रुक ने अपने बाप को कहा कि वो शूटिंग रेंज जाना चाहता है और उसके बाप की उसको गन चाहिए AR-15 स्टाइल राइफल, और उसके बाप ने कोई ज्यादा शक नहीं किया क्योंकि ये जो सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म है ये अक्सर ये लेके जाता था और उससे शिकार करता था, तो उस दिन भी उसने इसको दे दी। लॉ एनफोर्समेंट जो है वो अब एरिया के अंदर फिर रहे हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा वो गन शॉप था जिससे इसने बुलेट्स लिए हैं और इसकी कैसी आदतें थी कि ये एम्यूनिशन बाय करता था कि नहीं करता था, इसकी हैबिट्स क्या हैं। तो बस अब FBI और बाकी जो हैं उसके पीछे लगे हैं, तो अब फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या है। बहरहाल एनीवेज पता नहीं इसका क्या मोटिव था, बट अननेसेसरली एट द यंग एज ऑफ 20 इसने अपनी लाइफ जो है लूज कर दी है, कितना एक सिली डिसीजन जो है वो लेके ऐसे है। हैरिट्स की न्यूज है, आपको पता ही है कि हैरिट्स जो है वो इसराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, और उसके मुताबिक इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर के जो नतन्याहू के जो बेटे हैं यायर नतन्याहू, उन्होंने आज बड़ा जो है एतराज किया है कतर के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि कतर बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म है। अब जाहिर है कि कतर जो है उसको तो ये बातें पसंद नहीं आनी थी, उसने कहा कि ये इररिस्पॉन्सिबल लाइज हैं एंड इट्स शीयर नॉनसेंस, और आपको पता ही है कि कतर ही बैठा हुआ है इनके बीच में लड़ाई बंद करवाने के लिए और सीज फायर के लिए और हॉस्टेज डील के लिए। तो अब ये बड़े क्रिटिकल इसके जो कमेंट्स आए हैं ये अब सारी चीज को खराब करेंगे। यार जो है वो एक एवेंजेलिक जो चर्च है उसमें बात कर रहा था मायामी फ्लोरिडा के अंदर, और उसने कहा जी कि कतर स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, बड़ा रिच कंट्री है, और मुझे नहीं पता कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जब इसके ऑफिशियल्स आते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट क्यों बिछाया जाता है। ये सेकंड बिगेस्ट फाइनेंसर टेररिज्म का दुनिया में है आफ्टर ईरान। यार ने कहा कि जी ये दोहा जो है बहुत सारी यूएस यूनिवर्सिटीज को का डोनर भी है बहुत बड़ा, और उसने कहा जी कि ये सारे का सारा पैसा जो है ये कॉलेज कैंपसेस में यूज किया जा रहा है एंटी इसराइल प्रोटेस्ट के लिए। इसने कहा जी कि ये जो रेडिकल लेफ्ट की फंडिंग है, जो जॉर्ज सोरोस ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग्स है, और ये लोग जो हैं जो फंडिंग कर रहे हैं कोई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को, उसकी वजह से इसराइल के अगेंस्ट जो हैं अमेरिका के अंदर राइट्स आ रहे हैं। तो ये तो जनाब जो है वो काफी अब चौंका देने वाली बात है। 9 लोगों की डेथ हुई है जी ओमान के अंदर, जिसमें से के 4 पाकिस्तानी थे और 1 इंडियन था, जब एक मॉस्क जो है मस्कत में उसके ऊपर अटैक किया गया इन द एरिया ऑफ अल वादी अल कबीर, और वहां पे जो और लोकल अथॉरिटीज ने कहा है कि तकरीबन 30 के करीब डिफरेंट नेशनैलिटीज जो थी इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल वो जो है यहां पे वुंडेड हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि जो इंजर्ड है उनको ट्रीट किया जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। रॉयल ओमान पुलिस जो है वो फौरन वहां पे जगह पे पहुंची और वो उन्होंने कॉर्डन ऑफ अब एरिया को किया हुआ है। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू ओमान इमरान चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा जी कि ओमानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डेथ्स कंफर्म की हैं कि 4 पाकिस्तानी थे, 9 में से जो जिनकी डेथ्स हुई हैं अथॉरिटीज जो है दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, और एक हाई अलर्ट और स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है यहां पर लगाई गई है। ओमान बहुत ही छोटी खूबसूरत सी स्टेट है और बिल्कुल यूएई के साथ उसका बॉर्डर लगता है। तो उन्होंने जी अब अकॉर्डिंग टू सम वो इसको जो है टेररिस्ट अटैक कह रहे हैं। ये बड़ा काम क्वाइट, क्योंकि आपको पता है ये मिडिल ईस्ट में काफी ये इलाके काम क्वाइट हैं, तो ये बहुत ही रेयर किस्म का ये अटैक हुआ जिसको अब टेररिस्ट अटैक किया कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इंडियन एम्बेसी जो है ओमान में उसने भी कहा है कि उनका भी एक सिटीजन जो है उसकी डेथ हुई है और 1 जो है गंभीर अंदाज में जख्मी है। तो ये सारी जो है आज ओमान से बड़ी ही अफसोस की खबरें आई हैं। ढाका के अंदर तो जी जनाब, और सिर्फ ढाका में ही नहीं बांग्लादेश के तमाम बड़े जो शहर हैं जैसे कि राजशाही, कुलना में मनसिंग, रंगपुर, सब जगह बेतहाशा प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। 5 स्टूडेंट्स ऑफ बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी जो हैं उनकी डेथ हो गई है। 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो क्लैशेस हो रहे हैं इनके जो रूलिंग अवामी पार्टी है और पुलिस है उसके साथ उसमें जख्मी हो गए हैं। और मसला वही है जो हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि वो कह रहे हैं जी ये जो कोटा सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब्स में इसको खत्म करें। सैकड़ों ही आज सड़कों के ऊपर नजर आए, उन्होंने रोड्स ब्लॉक की, रेलवे लाइंस ब्लॉक की, और वो चाहते हैं कि जो रिजर्वेशंस का सिलसिला है ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस की रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जी ये सिस्टम जो है 30% गवर्नमेंट पोस्ट देता है बच्चों को और ग्रैंड किड्स को जो कि फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड हैं। 10% जो कोटा है वो औरतों के लिए है, 10% स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया जाता है, कुछ एथनिक माइनॉरिटीज और डिसेबल्ड लोगों को दे दिया जाता है, तो फिर बाकी लोगों के लिए गवर्नमेंट के जॉब्स कैसे बचेंगे। गवर्नमेंट जो है शेख हसीना की वो अब इन चीजों के साथ काफी जो है वो हैवी हैंडेडनेस वो दिखा रही है और इसके साथ बड़ी ही जो है वो सख्ती से वो लोग पेश आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हुए हैं पिछले 2-3 हफ्ते से ये किसी तरह थमने का बांग्लादेश में नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से काफी मुल्क के अंदर अनरेस्ट है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स, और पायल ज्वेलर्स जो हैं वो कहते हैं हमारे पास जी दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त हाई एंड ज्वेलरी है, तो आपका कोई भी ओकेजन है तो आप उसके लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन, और इनका नंबर है 9057907879। और जनाब डॉक्टर फयाज कुरैशी बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं, 3 इनके क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में, 1 स्कारबरो में, आप जरूर जाएं डॉक्टर फयाज कुरैशी के पास अगर आपको किसी तरह की भी डेंटिस्ट्री की सर्विसेज चाहिए, फैमिली डेंटिस्ट्री, ओरल सर्जरी, कॉस्मेटिक्स, सिडेशन। और इनका जो मिसेस आगा में जो क्लिनिक्स हैं उसका नंबर है 9052325678, और जो स्कारब्रो में जो क्लिनिक है उसका नंबर है 4165759999। ऐसे अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज जो डीआई खान, डेरा इस्माइल खान जो है केपी का इलाका, उसमें फिर से टेररिस्ट जो है उन्होंने आज फिर से एक ऑपरेशन किया सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, और गन बैटल हुई और इसके अंदर जो है 7 लोगों की डेथ्स हुई हैं, जिसमें के 2 आर्मी के सोल्जर्स हैं और 5 सिविलियंस हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर।
ये जो दो लोगों की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जो डेथ हुई है उसमें एक नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक था जिसकी एज 44 है और एक सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल है जिसकी की सिर्फ एज 23 ईयर्स थी। ये जो टेररिस्ट अटैक इन्होंने किया है 15 और 16 की नाइट पे, ये अटैक था रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर और ISPR के मुताबिक इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की स्टाफ के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके ऊपर काउंटर अटैक किया और एरिया को क्लियर किया, उसमें फिर जो है ये इन दो लोगों की जो है वो डेथ हुई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ही दुख का इजहार किया जिसमें कि दो बच्चे, दो हेल्थ वर्कर्स, एक गार्ड और सिक्योरिटी के पर्सनल जो है दो, उनकी डेथ हुई है और उन्होंने कहा जी कि मेरी जो कंडोलेंसेज उन्होंने ऑफर किए हैं इस फैमिली को। तो मतलब किसी तरह से भी ये चीजें जो है संभल नहीं रही हैं। इसके ऊपर आज फिर से जो है केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे पूछा गया है कि भई आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी के तो इससे ज्यादा इश्यूज आ गए हैं यहां पे केपी में। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर जो है अब ज्यादा जोर दूंगा, यानी कि इससे पहले जो थे वो नहीं दे रहे थे तो अब देंगे। PMLN जो है उसने कहा जी कि एक रिव्यू पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो है सुप्रीम कोर्ट उसको कि ये जो PTI को आप रिजर्व सीट्स दे रहे हैं फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, इसको आप रिकॉल करें। उन्होंने जो फाइल किया है वो किया है अंडर आर्टिकल 188 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रीड करता है कि ऑर्डर जो है वो 26 रूल 1 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 अगेंस्ट शॉर्ट ऑर्डर पास्ड ऑन July 12, 2024, जिसमें कि उन्होंने नेम किया है SIC के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा, ECP, MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और दूसरों को अपने जो हैं बैरिस्टर हॉरिस अजमत के थ्रू, और PMLN के ये प्रेसिडेंट जो हैं वो भी हैं। PMLN ने कहा है जी कि हम इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम जो है गवर्नमेंट रन कर रहे हैं सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर भी, और हमारा बड़ा की रोल है इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, और हम जो है मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी और ग्रोथ की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी तो वो बिल्कुल वो सारी सही नहीं थी कि आपने जिसमें कहा है कि PTI को जो है वो सीट्स दी जाएं, क्योंकि जो ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं ये PTI को नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका प्लीडिंग जो है केस की वो कर रहा था SIC और SIC जो है उसकी कोई अपनी कोई हैसियत नहीं थी तो उसको जो है ये सीटें ग्रांट नहीं की जा सकती। तो बहरहाल बड़ी खिचड़ी वगैरह जो है पकी, क्योंकि आपको पता ही है कि कल जो है जो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था जी कि ये हम लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, उन्होंने भी कहा था कि हम ये सारी की सारी चीज सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। अच्छा जी, इसके होते हुए अब PPP जो है उसने अपने आप को गवर्नमेंट से बिल्कुल ही डिस्टेंस कर लिया है कि जी आपने जो ये ऑर्डर दिया है कि हम PTI को बैन करेंगे, ये भी हमने आपको कल खबर सुनाई थी। PTI के बैन के ऊपर कल भी हमने आपको बताया था कि PPP के जो हैं सेनेटर रजा रब्बानी साहब और फरतुल्ला बाबर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल एब्सर्ड और बिल्कुल गलत है। आज भी जो है इसके ऊपर बहुत सारे PPP के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की। सबसे पहले तो शाजिया अता मरी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा जी हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया और ये कंसल्टेशन के बगैर कैसे गवर्नमेंट ने जो अपना डिसीजन ले लिया। सिंध प्लानिंग मिनिस्टर जो है नासिर हुसैन शाह, उन्होंने भी कहा जी कि ये PPP जो है बिल्कुल फेवर ही नहीं करता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप जो है बैन करें। एक टीवी के शो पे PPP की जो सेनेटर है शरी रहमान साहिबा, उन्होंने कंफर्म किया कि मरी और शाह के रिमार्क्स बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सेंटर ने ये इस तरह का मूव जो है ये क्यों किया है। वैसे तो जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो एलाइज के साथ पूछ के सारा कुछ करती हैं और ये स्टेप इन्होंने कैसे लिया है तो हमें नहीं पता और इसके बड़े बैड रिपरकशंस आएंगे। और उन्होंने कहा जी कि इस तरह से कुछ भी गवर्नमेंट जो है वो अचीव नहीं कर सकेगी। PPP को भी पिछले अरसे में यानी कि जो कुछ साल पहले गुजरे हैं उसमें PPP को भी खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हम आज भी यहां पे खड़े हुए हैं। तो आप ना तो किसी को ला सकते हैं, ना किसी को बैन कर सकते हैं, ना सेंसरशिप कर सकते हैं। जाहिर है कि वो शी वॉज टॉकिंग इन द रेलम ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी उसमें, और वो कहते हैं जी कि सिर्फ एक ही तरीका है कि इन लोगों को कहा जाए कि आप अपना तरीका बदलें, उसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, उन्होंने कहा जी कि हम जो है हमारे जो चेयरमैन है बीबी जरदारी साहब उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग का जो भी आउटकम होगा उस पर बात करेंगे। एक्स के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि PPP जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी के बैन का साथ नहीं दे सकती होती है और हर वो पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपरेट करती है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ लैंड और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करती है हम उसके बैन के हक में बिल्कुल नहीं है। इस पे अब बात करते हुए राणा सनाउल्ला साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमने जो है एक रेफरेंस हम डालेंगे फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर टू बैन पीटीआई और इसके अंदर दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि आप हमसे बातचीत करें, दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप जो है गवर्नमेंट जो है अपनी हाई हैंडेडनेस फिर यूज करती है। अब हाई हैंडेडनेस इसलिए यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इमरान खान साहब को हमने बड़ी दफा कहा है कि जी आप आके हमसे बात करो, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कई दफा जो है कहा है खान साहब को कि बात करो, लेकिन वो बड़े रिजिड हैं। इवन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी नेशनल असेंबली में उसमें भी उन्होंने पीटीआई को कहा था कि आप हमसे आके बात करें क्योंकि आपके पॉलिसीज पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। तो जो है अब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अब गवर्नमेंट जो है इनडिफरेंट तो होकर नहीं बैठ सकती है, जाहिर है गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा। इसके ऊपर जी इसहाक डार साहब ने लेकिन कहा है कि अभी तक पीटीआई को बैन करने का कोई फैसला हमने नहीं लिया है और हम ये फैसला अपने एलाइज के साथ और पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो बैठ के तय करेंगे, तो उसके बाद चीजें जो है वो आगे चलेंगी। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसने जनाब अब अप्रूव किया है 10-day फिजिकल रिमांड ऑफ इमरान खान साहब इन May 9 के जो 12 के करीब केसेस हैं उसके अंदर। आज इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के थ्रू कोर्ट में पेश किया गया। जज खालिद अरशद जो हैं वो केस सुन रहे थे और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो थे उन्होंने पहले खान साहब का फिजिकल रिमांड मांगा था। खान साहब ने जज को बताया कि मैंने बिल्कुल जो वायलेंट प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी थी और मैंने एक बड़ी दफा कहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी May 9 के इंसिडेंट्स पे होनी चाहिए, वो अभी तक कंडक्ट नहीं की गई है। मैंने इस सिलसिले में एक पिटीशन जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए। हालांकि मुझ पे खुद गुजरावाला में अटैक हुआ था और मैं एक FIR डालना चाहता था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। CCTV की सारी फुटेज जो है उसको गायब कर दिया गया है फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट जो है वो सारी ये बातें सुनने के बाद उसने अपना डिसीजन जो है वो रिजर्व किया ऑन फिजिकल रिमांड और उसके उन्होंने दोनों तरफ के जो बयान थे लॉयर्स के भी और प्रोसिक्यूशन के भी वो सुने। खान साहब जो हैं उनको रिमांड किया गया था 5 केसेस में सर्वर रोड पुलिस स्टेशन पे, 3 केसेस के लिए गुलबर्ग पुलिस स्टेशन, 1 केस के लिए रेस कोर्स पुलिस स्टेशन और 1 के लिए शादमान मुगलपुरा और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भी। इसके साथ साथ जो नैब की टीम थी वो भी आज अडियाला जेल पहुंची हुई थी और वो तोशाखाना रेफरेंस के अंदर खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे। तो भाईजान आपको ये हम बता दें कि जितने आपके टैक्टिक्स हैं ना ये सिर्फ इमरान खान साहब को और पॉपुलर कर रहे हैं। आप अपने आप को इंतहाई अनपॉपुलर और उसको इंतहाई पॉपुलर कर रहे हैं। उसको आप 5 साल पूरे करने देते वो इंतहाई अनपॉपुलर हो जाता, अपनी टर्म भी पूरी कर लेता, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी चलता, ये अफरा तफरी भी ना होती। आपको ये जो फुर्तियां आप दिखा रहे हैं आपको ये भी ना दिखानी पड़ती हैं, आपका भी नाम खराब ना होता, आप आ जाते आराम से जीत के क्योंकि इमरान खान से कोई लोग इतने। लेकिन अब जो है अब वो इतना पॉपुलर है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में, किसी से भी आप पूछ लें, किसी से भी आप पूछ लें। ये बल्कि अभी बड़ी फनी एक बात है आमिर, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। एक ये कोई गेम शो चल रहा था उसके अंदर बॉलीवुड के कुछ स्टार्स बुलाए हुए थे तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि इस एरिया में इस खिते में, यानी आप सोचे हिन्दुस्तान में वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस खिते में अगर आपको कोई बोले कि एक निडर लीडर कौन है जो डरता नहीं है, तो आपको पता है इंडियंस ने मोदी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसका नाम लिया? इमरान खान का।
क्या बात कर रही
है जी, इमरान खान साहब का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर एक बहादुर और नडर लीडर है तो वो इमरान खान है इस रीजन के अंदर, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की वो बात कर रहे हैं, दुनियादारी की नहीं कर रहे थे, इंडियन थे और किसी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया या किसी यानी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया या कुछ और नहीं लिया। तो जनाब उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना, अब पॉपुलैरिटी तो वही होती है जो सर चढ़ के बोले और हर कोई तारीफ करे। आमिर की तरह नहीं कि अपनी तारीफ खुद की, मैं खूबसूरत आदमी हूं, मैं बड़ा लायक हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं बड़ा वो हूं। तो तारीफ होती है जो दुनिया करे, खासतौर पर दुश्मन करे। खैर हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है लेकिन बारा ऐसा है। तो जनाब ऐसा है, आप ये जो कर रहे हो आप ज्यादा उसको पॉपुलर बना रहे हो। अच्छा जनाब, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इंडिया भी आपको हमने बताया बड़ी दफा इम्प्रेस हो गया है, बहुत इम्प्रेस हो गया है। वही घमसान की जंग जो पाकिस्तान में चल रही है पीटीआई और गवर्नमेंट की, जो यानी कि जो पीटीआई और जो गवर्नमेंट की अलायंस है उनकी, वही एग्जैक्टली कांग्रेस और बीजेपी की भी वहां पे हिंदुस्तान के अंदर भी चल रही है और जाहिर है कि छोटी रीजनल पार्टीज भी हैं। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा स्लैम किया जी बीजेपी को फॉर एलिगेशंस के, उन्होंने कहा जी के बीजेपी ने इल्जाम लगाए थे राहुल गांधी जी के ऊपर। वो ये कहते हैं कि राहुल, उन्होंने कहा कि जी राहुल गांधी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है मुल्क के अंदर वायलेंस को एनकरेज करते हैं। तो जाहिर है अब कांग्रेस तो इस पर बड़ी भड़क गई। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के पास अब कुछ मुद्दे तो रहे नहीं है, इसलिए अब बीजेपी चीप पॉलिटिक्स कर रही है। और बीजेपी जो थी वो उसने टारगेट किया था गांधी जी को, ये जिस वक्त ट्रंप साहब का असैसिनेशन का ट्रंप जो अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद बीजेपी के जो आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने लिखा था कि तीसरी दफा राहुल गांधी जी फेल हो चुके हैं और फिर भी वो एनकरेज करते हैं और जस्टिफाई करते हैं वायलेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है इसीलिए वो जो है हर दफा इलेक्शन हार जाते हैं। नहीं, पहले जो है मैं करेक्ट करना चाहती हूं अपना पहला सेंटेंस कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी एनकरेज करते हैं वायलेंस, नहीं ये नहीं उन्होंने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि गांधी जी एनकरेज कर रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट मोदी जी, ये उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा जी कि ये तीन दफा हार चुके हैं फिर भी इनको अभी चैन जो है वो नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पंजाब में आप देखें अंडर कांग्रेस क्या क्या कुछ किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे तो उनकी सिक्योरिटी जो थी वो अंडरमाइंड की गई थी, कितनी देर वो फ्लाई ओवर के ऊपर खड़े रहे थे और जो है वो कोई भी इनके अपने जो है अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। कांग्रेस के अब मीडिया डिपार्टमेंट के जो हेड हैं पवन खीरा, वो भी जाहिर है उन्होंने भी खुश चुप नहीं रहना था। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं और राहुल गांधी और उसकी फैमिली और नेहरू को और इंदिरा जी को, इनको हर वक्त जो है आप उनके बारे में ये झूठ बोलते रहते हैं और झूठ स्प्रेड करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो है मोदी जी ने तो इनकी ये इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली है इसकी सिक्योरिटी तक जो है उन्होंने बड़ी मिस्टीरियसली विदड्रॉ कर लिया और हमने कांग्रेस ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहले तो हमने जो है राइट विंग टेररिस्टों ने महात्मा गांधी जी को मारा, उसके बाद कांग्रेस ने अपने दो एमपीज जो हैं वो टेररिस्टों के हाथ गंवाए, फिर हमने पूरी की पूरी जो छत्तीसगढ़ की लीडरशिप जो थी वो जो थी ये जो टेररिस्ट विंग जो था उसके ऊपर हमने छोड़ दी थी, यानी कि उनके रैबो क्रम पे वो बिचारी थी, उसके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी गई थी और बीजेपी की गवर्नमेंट सिर्फ बैठे देख रही थी। तो हमको इल्जाम देने से पहले अपनी जो है गिरबान में झांक के आपको देखना चाहिए और ये चीप पॉलिटिक्स आप छोड़ दो। इसके साथ साथ आज दुनिया जो है वो बड़ी भड़की है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक्यूज किया है कांग्रेस को ऑफ बीइंग एंटी बैकवर्ड क्लासेस और उन्होंने कहा जी कि अगर जो है कांग्रेस आ गई हरियाणा के अंदर तो ये तमाम की तमाम जो रिजर्व सीट्स जो कि अदर बैकवर्ड जो क्लासेस को मिलती है वो सारी की सारी तुम लोगों से छीन के ये मुसलमानों को दे देंगे। ये जो बैकवर्ड क्लासेस का जो सम्मान सम्मेलन चल रहा था उसके ऊपर बात करते हुए इन्होंने जो काका कालिकार कमीशन जो फॉर्म किया गया था 1950 उसका जिक्र करते हुए कहा कि ये जो रिजर्वेशन थी ये ओबीसीज को दी गई थी लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इसके रिकमेंडेशंस जो हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इन 1980 इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने तो बल्कि मंडल कमीशन जो था उसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था जो कि गरीबों के लिए शायद काम करते। 1990 में ये एक्सेप्ट हो गया था लेकिन फिर भी राजीव गांधी जी ने ढाई घंटे की स्पीच की और उन्होंने ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो रिजर्वेशन था उसको अपोज किया। तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट कांग्रेस है उसने तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन है वो छीन दिए हैं और मुसलमानों को दे दिए हैं और यहां पे हरियाणा में भी वो सेम करना चाहते हैं अगर वो पावर में आए तो। हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे क्योंकि आपको हम बता दें कि हरियाणा के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो लेटर दिस ईयर होंगे। तो उसी का जिक्र अमित शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि सीनियर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि इस स्टेट में थे उन्होंने कहा जी उनके अंडर जो है ये 10 साल में कोई भी तरक्की हरियाणा के अंदर नहीं हुई है, हरियाणा को डेवलपमेंट से डिप्राइव रखा गया है और अब हम जब अपनी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम हुड्डा साहब से 10 साल की जो मिस गवर्नेंस है उसका सवाल पूछेंगे। ये व्हाट इज दिस आमिर साहब, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, है जी क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जनाब श्रद्धा कपूर साहबा जो हैं उन्होंने आखिर अपनी जो बहुत ही मच अवेटेड जो सीक्वल था स्ट्रीट टू उसका जो बनाती है ये मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स वाले, उसका आज एक पोस्टर जो है वो शेयर किया है। पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक औरत जो है उसने अपना चोटी पकड़ा हुआ है, बड़ा लंबा सा है, और वो उससे थंडर बोल्ट जो है वो क्रिएट कर रही है। उसके पीछे एक टॉल सा बंदा, अननोन आइडेंटिटी जो है वो खड़ी हुई है ब्लैक केप के अंदर, और लग रहा है कि जैसे कोई हॉन्टेड सा एरिया है जहां पे ये खड़े हैं। तो इसका जो सेइंग है वो उसके ऊपर, यानी जो कैप्शन वो जा रहा है कि काली ताकत से सबकी रक्षा करना, वो आ रही है बस दो दिन में। यानी कि जो स्ट्रीट 2 का जो ट्रेलर है वो दो दिन में आने वाला है, और फिल्म जो है वो रिलीज की जाएगी अगस्त 15 को। अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उन्होंने आज अपने एक्स के ऊपर लिखा कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन जो हैं शाहरुख खान की जो नेक्स्ट फिल्म किंग है उसके अंदर नजर आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये एंटेगनिस्ट का रोल जो है वो प्ले करेंगे। बिग बी ने बात करते हुए कहा जी कि ये फिल्म जो है सुजॉय घोष बना रही है और इसके अंदर शाहरुख खान की बेटी सुहाना भी हैं। तो फैंस ने कहा अरे क्या बात है, हमने तो अभिषेक को ब्रीद इंटू शैडोज, रावण और बीबी के अंदर देखा है और उसका क्या लेवल था ऑफ परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल, तो क्या बात है, अगर ये करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, कभी भी जूनियर बच्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, ऐसा है। और जनाब आज फिर से जो भद्दा सच है बॉलीवुड का वो सामने आ गया, सिद्धार्थ कार्निक जो है 41 ईयर्स के हैं अभी, आपको पता ही है बड़ी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी एनिमल के अंदर देखे गए थे, और उन्होंने फिर से जो कास्टिंग काउच का जो मुद्दा है उसको जिंदा कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ 22 ईयर्स का था 2005 में जब मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता था और वहां पे फिर एक अपने पोर्टफोलियो बना बना के लोगों को भेज रहा था, तो एक जो कोऑर्डिनेटर था उसने मुझे मेरा पोर्टफोलियो देख के मुझे अपने घर पे रात के 10:30 बुलाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे ऑड लगा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, शायद बिजी होएगा दिन में, मैं गया। जब उसके घर पे गया तो घर सारा उसका फैमिली पिक्चर से भरा हुआ था, मुझे जो एनवायरमेंट है बड़ा सेफ लगा। उसके बाद वो इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताने लगा और उसने कहा भाई इस इंडस्ट्री में तो करियर अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। कहते हैं तभी मुझे समझ में आ गया कि दाल तो पूरी की पूरी काली है, दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं भाईजान, मुझे इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से काम नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूं। तो मैं वापस चला गया। तो उसने एडवाइस अब की है, ये सिद्धांत जो है उसने एडवाइस किया, उसने कहा ये लोग रेपिस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो आपको इनको ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं है, आपको वहां से निकल आना है। तो ऐसा है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बात है जनाब, सही है बिल्कुल। और जो पीसीबी जो है उसने कंफर्म किया है द अपॉइंटमेंट ऑफ टोनी हैमिंग एज द न्यू चीफ क्यूरेटर, और इनको 2 ईयर्स का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये लाहौर पहुंचेंगे कल और इनका इमीडिएट टास्क होगा कि ये पिचेस को प्रिपेयर करेंगे फॉर अपकमिंग 5 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश, 2 जो हैं हो रहे हैं अगस्त सितंबर में, और फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो हैं 3 मैचेस होंगे अक्टूबर में। तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि ये पिचेस को आप करें, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पिचेस की आपको तैयारी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 2025 की फ्रॉम फरवरी 19 टू मार्च 9 उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। इनका जो है तकरीबन 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये बहुत जबरदस्त आइकॉनिक दुनिया के क्रिकेट ग्राउंड हैं उसकी, इनको इन्होंने क्यूरेटर उनके थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम और पर्थ और तस्मानिया, इसके अलावा जो है उन्होंने बांग्लादेश, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई की भी पिचेस जो है वो क्यूरेट की हैं। आईसीसी के हेड क्यूरेटर के तौर पे इन्होंने जो है काम किया हुआ 2007 से 2017 के बीच में इन दुबई, और वहां पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ये पिचेस देखते थे, और आपको पता ही है कि ये जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये पाकिस्तान का होम वेन्यू रहा है बड़ा अरसा 2009 से 19 तक। जो ये हैं हेमिंग साहब जो हैं, ही हैज रिप्लेस जाहिद साहब जिन्होंने कि अपना करियर शुरू किया था 2001 में और फिर ऑन एंड ऑफ जो थे वो क्यूरेटर रहे थे। पीटीआई की न्यूज है, पीटीआई मीन्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक बीसीसीआई जो है उससे हमको रिटर्न प्रूफ चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा कि पाकिस्तान में आके आप 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, क्योंकि आपके ऊपर ट्रैवल बैन है और सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। ये कहा आज एक सोर्स ने पीसीबी में, इससे पहले भी नकवी साहब जो है पीसीबी के चेयरमैन वो कह चुके हैं कि जय शाह साहब को अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए। इसी सिलसिले की आज ये पीटीआई की न्यूज थी। उन्होंने कहा जी कि पीसीबी जो है वो चाहता है कि ये 8 नेशन टूर्नामेंट जो हो रहा है फरवरी मार्च के बीच में, इसके अंदर बीसीसीआई अपनी पोजीशन क्लियर करे। आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोलंबो में होने वाली है जुलाई 15 को, और उसके अंदर बिल्कुल उसके एजेंडा पे अभी तक हाइब्रिड जो मॉडल की गेम है वो अभी ऑन नहीं है, लेकिन जो यूएई है उसने बीसीसीआई ने यानी कि सॉरी यूएई ने नहीं बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो यूएई में कराए जाएं, हम शायद पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई को आईसीसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसके ट्रैवल बैन्स क्या हैं एटलीस्ट 5 मंथ्स बिफोर द इवेंट। बीसीसीआई ने बड़ी दफा कहा है कि हम तो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती है, तो उसके लिए पीसीबी ने कहा है कि आप रिटर्न हमें लिख के ये भेजो और आईसीसी को भी भेजो। इन्होंने जो पहले भी जो 2023 का ओडीआई एशिया कप था जिसको कि पीसीबी ने होस्ट किया था वो फिर श्रीलंका में मूव करना पड़ा था हाईब्रिड मॉडल के ऊपर क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। पीसीबी ने अपना जो स्केड्यूल एक है ड्राफ्ट स्केड्यूल वो आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दे दिया है जिसके के अंदर इंडिया के तमाम मैचेस अकॉर्डिंग टू देयर विश लाहौर में शिफ्ट किए गए हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को है और ये इवेंट जो है कराची से शुरू होगा ऑन फरवरी 19 और फाइनल जो है वो फिर और सेमीफाइनल्स लाहौर के अंदर मार्च में होंगे। फाइनल जो है मार्च 9 को लाहौर में होगा लेकिन मार्च 10 का डे जो है वो भी एक रिजर्व डे रखा हुआ है कि अगर वेदर खराब हो गया तो फिर जो है वो 10th को भी फाइनल हो सकता है, कुछ मैचेस जो है रावलपिंडी में भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की 15 मेंबर नेशनल विमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो आज कराची से कोलंबो वाया दुबई ट्रेवल करके गई टू प्ले विमेन्स T20 एशिया कप। इसके अंदर 8 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये मैचेस जो हैं ये डम्बूला में खेले जाएंगे फ्रॉम जुलाई 19 टू जुलाई 28। ये स्क्वाड जो है इसको लीड कर रही है निदा डार। इनका पहला मैच जो है डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया के खिलाफ होगा जुलाई 19 को, फिर एक मैच नेपाल के अगेंस्ट जुलाई 21, अगेंस्ट यूएई ऑन जुलाई 23। 8 टीम्स जो है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर हैं इंडिया पाकिस्तान नेपाल यूएई, ग्रुप बी के अंदर हैं बांग्लादेश मलेशिया थाईलैंड और होस्ट जो है श्रीलंका और फाइनल जो है जुलाई 28 को खेला जाएगा। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज फ्रॉम एपी एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फ्रांस के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर जो हैं जिरॉ, 37 ईयर्स वैसे तो उनकी एज है लेकर उन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेशनल करियर से रिटायर हो रहा हूं। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिखा कि मैंने हमेशा से कहा था कि यूरो कप जो हो रहा है यूरोपियन चैंपियनशिप उसमें जहां तक फ्रांस जाएगा वहां तक मैं साथ चलूंगा लेकिन अब जो है वक्त आ गया है गुड बाय कहने का। आपको पता ही है कि स्पेन ने फ्रांस को हराया था। जिरॉ जो है उन्होंने 57 गोल्स किए हैं इन 137 मैचेस फॉर फ्रांस। इन्होंने जो है उस स्क्वाड में थे जो 2018 में जिसने वर्ल्ड कप भी विन किया था। इन्होंने अपना करियर लेकिन कहा है कि मैं कंटिन्यू रखूंगा क्लब क्रिकेट के अंदर मेजर लीग सॉकर में क्योंकि इन्होंने साइन की है जो लॉस एंजलस एफसी है उसके साथ और ये गए थे एसी मिलान से और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका 2025 तक चलेगा। इन्होंने यूरोप जो अब छोड़ेंगे ये 18 ईयर्स के बाद आफ्टर प्लेइंग विद टॉप लीग्स इन फ्रांस इंग्लैंड एंड इटली। जिरॉ जो है वो अब ज्वाइन ये एलएएफसी करेंगे और ये जो है 6 प्रोलिफिक जो सीजन्स थे वो इन्होंने खेले थे आर्सेनल के लिए फ्रॉम 2012 टू 2018, 3 ईयर्स ईच एट चेल्सी एंड देन मिलान। इन्होंने बनाए थे 285 गोल्स इन 716 क्लब मैचेस, वाओ। और ट्रॉफीज जो है इनको जो मिली है वो 2021 की चैंपियंस लीग मिली थी विद चेल्सी और फिर इन्होंने विन किया था फ्रेंच लीग विद मॉन्टपेलियर इन 2012 और इटालियन लीग विद मिलान 10 ईयर्स लेटर। तो बहुत ही इलस्ट्रियस करियर था जनाब इनका सॉकर के अंदर लेकिन बड़े लोगों को पसंद थे जिरॉ लेकिन अब इन्होंने जी जो है टाटा बाय बाय का लेकिन क्लब क्रिकेट खेलेंगे। जाहिर है पहले लंबे हैं साकर के अंदर तो जाहिर है बंदा साकर छोड़ नहीं सकता।
ये थी गर्मा गर्म खबरें,
बहुत ही गर्म थी।
चलें जी
बहुत अब ठंडी करेंगे,
नहीं ठंडी हो जाएंगी
फ्रिज में रखते हैं इनको,
फ्रिज में रख लेते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का और तमाम सामीन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब 9 बजे तक हमारा और आपका ऐसा सिलसिला जारी रहेगा, अब से लेकर 9 बजे तक 10 मुहर्रम का सेगमेंट आपके लिए पेश किया जाएगा 770 AM डायल पर भी और ई आवाज टीवी पर भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक ब्रेक और उसके बाद सेगमेंट शुरू।
کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ ہیری سون دی میجسٹک مارگیجز کے ساتھ ریزیڈینشل کمرشل مارگیج ری فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے کسی قسم کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے سارے بینکرز اور لینڈرز کے ساتھ ڈیپ تعلقات ہیں ان کے آپ کو فائنینسنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں دینے پڑیں گے ہیری سون جی بڑی کمال کی تگڑم لڑا سکتے ہیں بس آپ کال کر لیجیے اور پیسے کا رینج ہو جائے گا $228 سے $1,000 مہینہ کیسے بچا سکتے ہیں کال ہیری سون Now, 647-228-1000, Harry Sond of Majestic Mortgages.
انہا سونا کر لیا
شاہین افریدی شکیب الحسن اور مزید سپر اسٹار کو دیکھیے ایکشن میں
جسے فریج سٹوو ڈش واشر تھری پیس کچن بنڈل اس کے علاوہ فرنٹ لوڈ واشر اینڈ ڈرائر انرجی سیور انرجی سٹار پھر ٹی وی سیکشن ایچ سونی سیمسنگ پیناسونک شارپ ہر سائز سے ہر برانڈ دا ٹی وی ود دی لوئسٹ پرائسز ان دا ٹاؤن صرف برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تے برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 بووے ڈرائیو ویسٹ برامٹن یا کال کرو 905-450-2828 905-450-2828
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। $12 ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ